नमस्कार
नमस्कार।
आज हम अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करेंगे।
हाँ, जिसका शीर्षक है फिजा बदल देती है अवतार की आंधी।
जी, ये जन्माष्टमी पर दिया गया उद्बोधन है और इसमें सृष्टि के संतुलन और अवतार के उद्देश्य पर बड़े गहरे विचार हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, इस उद्बोधन का मूल तत्व तो गीता के उस श्लोक में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
हाँ, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्।
जी, मतलब जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान की शक्ति, वो चेतना अवतार के रूप में प्रकट होती है।
और पूज्य गुरुदेव ये स्पष्ट करते हैं कि ये संतुलन सिर्फ बाहरी दुनिया का नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारे भीतर का भी संतुलन है, हमारी सोच, हमारे कर्म, सब जुड़ा है इससे।
हाँ, उन्होंने एक बड़ा सहज सा उदाहरण दिया है। जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है ना, वैसे ही मनुष्य की वृत्तियां, मतलब हमारी आदतें, हमारा झुकाव, वो भी अगर संभाला ना जाए तो पतन की ओर जा सकता है।
सही कहा, अगर हम अपने अंदर समाज में सफाई नहीं रखेंगे, मतलब सुधार का प्रयास नहीं करेंगे, तो गंदगी बढ़ेगी ही।
और यही गंदगी, यही अनाचार, यही असंतुलन फिर विनाश का कारण बनता है।
और इसीलिए इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए अवतार की जरूरत बढ़ती है, ईश्वरीय चेतना का हस्तक्षेप होता है।
लेकिन यहाँ पूज्य गुरुभाव एक बहुत बड़ी बात कहते हैं।
हाँ,
वे अवतार को सिर्फ 10 या 24 तक सीमित नहीं रखते।
नहीं,
वो कहते हैं कि हर वो महामानव, ऋषि, संत, लोक सेवक जिन्होंने समाज को दिशा दी,
नैतिक मूल्यों को स्थापित किया,
वो सब एक तरह से देखा जाए तो अवतार के ही अंश हैं।
और इससे भी आगे बढ़कर हमारे भीतर का साहस,
हाँ, हमारी अंतरात्मा की आवाज
जो हमें गलत करने से रोकती है,
वो भी एक आंतरिक अवतार है।
ये सोच तो बहुत व्यक्तिगत जिम्मेदारी डालती है हम पर।
ये तो कमाल की बात है, मतलब सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड ही नहीं है।
बिल्कुल नहीं, पूज्य गुरुदेव ने समर्थ गुरु रामदास का उदाहरण दिया है। वो शादी के मंडप से उठकर चले गए।
क्यों?
क्योंकि उन्हें एक बड़ी पुकार सुनाई दी, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए।
और फिर उन्होंने शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्र नायक को तैयार किया।
इसी तरह शंकराचार्य जी माँ की इच्छा के शायद विरुद्ध जाकर भी,
हाँ, उन्होंने उस समय जो अनास्तिकता फैल रही थी उसके खिलाफ पूरे भारत में आस्तिकता की, ज्ञान की ध्वजा फहराई।
इन सब ने बाहरी चीजों से ज्यादा महत्व भगवान की असली पुकार को दिया, मतलब अपने कर्तव्य, अपने धर्म की पुकार को।
तो भगवान की पुकार सुनना और उसके हिसाब से जीना, यही सच्ची पूजा है।
बिल्कुल, और ये पुकार सिद्धांतों, आदर्शों, नैतिकता के रूप में आती है। पूज्य गुरुदेव साफ कहते हैं कि अगर कोई माला फेरता रहे पर उसका जीवन घिनौना हो, चरित्र खराब हो,
दूसरों को कष्ट दे, बेईमानी करे,
हाँ, तो वो भक्त नहीं हो सकता। भगवान तो हृदय में बसते हैं, आदर्शों में, श्रेष्ठ कर्मों में।
पर श्री कृष्ण का जीवन, वो तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है।
बिल्कुल,
उनका जन्म देखिए कितनी विपरीत परिस्थितियों में हुआ, कारागार में, मृत्यु का साया, लेकिन उनके माता पिता का संकल्प, देवकी का विश्वास, सारे बंधन टूट गए। ये क्या सिखाता है?
यही कि मनुष्य का संकल्प, उसका साहस, उसकी पॉजिटिव सोच, यही सबसे बड़ी ताकत है,
हर मुश्किल को पार करने की ताकत।
हाँ, और श्री कृष्ण का जीवन सिर्फ संघर्ष ही नहीं है, उसमें सरसता भी है, कला भी है, जीवन का आनंद भी है।
हाँ, वो रासलीला वाली बात।
पूज्य गुरुदेव उसे कैसे देखते हैं?
वो उसे कामुकता से बिल्कुल परे देखते हैं। वो कहते हैं ये तो बालक बालिकाओं के बीच की सहजता, पवित्रता, कला सीखने का, जीवन में आनंद भरने का एक उत्सव था।
मतलब जीवन को हंसी खुशी, हल्के पुलके ढंग से जीना भी उन्होंने सिखाया, बोझ नहीं बनाना।
बिल्कुल, और फिर उनका वो अमर संदेश,
कर्म योग का सिद्धांत,
फल की चिंता किए बिना सही कर्म करना।
हाँ, पूरी शराफत और ईमानदारी से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से जो आत्मसंतोष मिलता है ना,
वही सबसे बड़ा इनाम है, परिणाम चाहे जो हो।
बिल्कुल, और एक बहुत जरूरी बात जो पूज्य गुरुदेव याद दिलाते हैं कि अवतार अकेले सब कुछ नहीं बदलते।
अच्छा।
हाँ, वो एक माहौल बनाते हैं, एक हवा, एक आंधी पैदा करते हैं विचारों की, प्रेरणा की।
लेकिन उस आंधी को सबल बनाने के लिए,
उसके लिए असंख्य लोगों का जुड़ना जरूरी है, लोक शक्ति का जागरण, जैसे राम को वानर सेना की जरूरत पड़ी,
कृष्ण को पांडवों और ग्वाल बालों की।
हाँ, सही बात है।
तो असली चमत्कार क्या है?
पूज्य गुरुदेव के अनुसार वो कोई अलौकिक घटना नहीं है।
तो फिर क्या है
असली चमत्कार? है व्यक्ति और समाज के चरित्र का ऊंचा उठना, नैतिक और चारित्रिक उत्थान।
वाह, तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि ईश्वरीय शक्ति या अवतार सिर्फ किसी एक व्यक्ति में नहीं
नहीं बल्कि वो एक विचार के रूप में, एक आंदोलन के रूप में, श्रेष्ठ कर्मों के रूप में प्रकट होता है।
और सच्ची आध्यात्मिकता जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं है।
बिल्कुल नहीं, बल्कि सिद्धांतों पर टिके रहकर साहस और आनंद के साथ उनका सामना करना है और समाज के संतुलन में अपना योगदान देना है।
बहुत खूब।
और अंत में एक विचार हम सब के लिए छोड़ जाते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की पुकार, सही रास्ते पर चलने का आह्वान, वो हम सबके भीतर लगातार गूंजता है। तो आज की परिस्थितियों में, इस भागदौड़ में, हम उस पुकार को कैसे सुने, कैसे पहचाने
और सुनकर उस पर चलने का साहस कैसे जुटाएं धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर।
हाँ, इस पर सोचना जरूरी है। इसी विचार के साथ ओम शांति ही।
ओम शांति।